नरं चैव दत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके श्रीमद्भागवत क्रम के अनुसार चौथे स्कंध के 28 अध्याय का 10वां श्लोक श्लोक बोर्ड पे लिखा है, मेरे पीछे दोहराएंगे। गंधर्व यवनाक्रांता कालकन्योप उपदिष्टां कालकन्यो उपदर्शितां हातुं तच्चक्रमे राजा दाम्पुरीं अनिकामतः गंधर्वयमन आक्रांतां कालकन्यो उपमर्दितां हातुं प्रचक्रमे राजा ताम्पुरीं अनिकामतः गंधर्वयवन आक्रांतां कालकन्योपमर्दितां हातुं प्रचक्रमे राजा ताम्पुरीं अनिकामतः। शब्दार्थ गंधर्व, गंधर्व सैनिकों ने, यवन तथा यवन सैनिकों द्वारा आक्रांतम हराया हुआ कालकन्या, कालकन्या द्वारा उपमर्दितम कुचला हुआ हातुम त्यागने के लिए प्रचक्र में बाध्य हुए राजा, राजा पुरंजन ताम उस पुरीम पुरी को अनिकामतः अनिच्छा होने पर भी। अनुवाद तात्पर्य श्रीमदे श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई थी, और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाह रहा था किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना ही पड़ा, क्योंकि कालकन्या ने उसे पहले से कुचल दिया था। तात्पर्य जीव भगवान की संगत से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयास करता है, उस विशेष प्रकार का शरीर धारण करके जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर एक सूक्ष्म कीट तक हो सकते हैं, इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास में हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहला प्राणी था जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु तक का भी हो सकता है। विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा कालकन्या और माया के अनुग्रस्त मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। यद्यपि इस शरीर पीड़ा का आगार है, भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग करने का प्रयास करे किंतु वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वह लौट कर फिर मल में चला जाता है। इस प्रकार सुअर प्राय गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है और यदि कोई उसे हटाकर स्वच्छ स्थान में रखता है तो वह फिर वहीं पर लौट जाता है। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वह अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है। यद्यपि राजा पुरंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे किंतु वह अपनी नगरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस शब्दों में जीव चाहे जैसी स्थिति में हो शरीर को त्यागना नहीं चाहता किंतु उसे छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं है। जीव इस भौतिक जगत को विविध प्रकार से भोगना चाहते हैं, इसलिए प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की व्यवस्था देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक तथा बालक से तरुण और फिर पौधा को प्राप्त होता है तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है तो जीव इसे छोड़ने में आनाकानी करता है, जबकि यह आगे किसी काम की नहीं रह जाती। यद्यपि यह संसार तथा भौतिक देह आराम देह नहीं है तो भी जीव इसे क्यों नहीं छोड़ना चाहता। जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है इसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है, तरह तरह के कार्यों में जुट जाता है और प्रत्येक दशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु श्रम ही करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतरण के विषय में जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप अथवा शाश्वत राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, इसलिए वह वर्तमान शरीर से चिपका रहना चाहते हैं, भले ही वह व्यर्थ कौन हो चुका हो। फलस्वरूप इस संसार में सबसे बड़े कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। यह आंदोलन मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में बहुत जानकारी प्रदान करेगा कि जो ईश्वर है और वो ईश्वर श्री कृष्ण है और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद तथा ज्ञान में रह सकता है। जो कृष्ण भक्त है वह इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता है, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में निरंतर बना रहा आता है। भक्तजन सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मीजन इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यंत भयभीत रहते हैं। अज्ञान अतिनिरुद्धस्य ज्ञानञ्जन समक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदन्तिक। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूर्नवश्नवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचां पङ्गुमलं गजतगिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयतं सुरत पंगौ मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदां भोजो श्री राधा मदन मोहन वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारी हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का स्वागत है इस कृष्ण भावनावत संघ वृंदावन शाखा की ओर से सुनिश्चित। ये बड़े भाग्य की बात है कि हम लोग को श्रीमद् भागवत जैसा अद्भुत ग्रंथ श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस समझना चाहिए कि जिस समय जीवात्मा का सर्वोपरि सद्भाग्य का उदय होता है तो उनके फलस्वरूप इस प्रकार का एक अवसर जीव के हाथ में आता है जो हमारे पास है। क्योंकि इस ग्रंथ में जो भी रूपक या आख्यान उपाख्यान दिए गए हैं उस समस्त आख्यान उपाख्यान से जीव को इतना जागृति मिलता है, उनके आत्म तत्व के अभ्यास में वो पुनः पुनः उनको डालता रहता है। और जहां तक हम लोग देखते हैं कि इस शरीर की श्रीमद् भागवतम निंदा करता है और ये माया के संबंध की भी कोई ज्यादा प्रशंसा नहीं उसमें की गई है, अर्थात दूसरे अर्थ में निंदा ही लिखी गई है। क्योंकि वस्तुतः नित्य जीव के लिए ये अनित्य शरीर एक बहुत बड़ा उनके ऊपर बोझ है। इसलिए जीवात्मा को पुनः उनकी उन शाश्वत स्थिति को उपलब्ध कराने के लिए श्रीमद् भागवतम जिस प्रकार उपदेश करता है और कोई ग्रंथ इसी प्रकार विवेचना के साथ उपाख्यान के साथ उनका उपदेश, ऐसा नहीं होता है। इसलिए चुनी हुई कथाओं को उपाख्यानों को श्रीमद् भागवतम में विद व्यास महाराज ने ग्रथित किया। हम लोग कई दिन से ये पुरंजन उपाख्यान को श्रवण करते, उनमें भी कई दिन से हम लोग जरा के ऊपर बोल रहे हैं या सुन रहे हैं। बोलने वाले बोलते हैं सुनते हैं क्योंकि ये बहुत श्लोक में ये शिक्षा है लेकिन बहुत उपादेय शिक्षा है। कोई कह सकता है कि अरे इतना लिखने की क्या आवश्यकता, बार बार कोई बात को लिखे हैं। वो इसलिए आवश्यकता है कि बार बार इनमें सुनने के बावजूद भी हम लोग समझने के लिए तैयार है, बहुत कठिनाई है। फिर भी हम अपने आप के अवहेलना करके उन शरीर का पालन पोषण करते हैं, देखा जाता है। इसलिए बारंबार इस बात को बताया गया है कि यह शरीर जीव के लिए अन्य अनेक कष्टों को लेकर के आने वाला है, और आखिरी कष्ट जैसे पुरंजन के ऊपर आ पड़ा है और उनको वो झेल रहा है। वस्तुतः ये रूपक सभी जीवात्माओं को बहुत फिट होता है, क्योंकि हम सब लोग को ये अनुभव है कि हमें जिस शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर को आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। तो पीछे छोड़ने वाली वस्तु के पीछे क्यों लगा जाए? अगर बुद्धिमानी पूर्वक और विचार पूर्वक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया जाए तो वो व्यक्ति आत्म तत्व के प्रति अत्यंत जागृत हो जाएगा। अब बहुत आवश्यक है, अन्यथा जैसे पुरंजन यहां पर जिस प्रकार दुरंत चिंताओं के साथ नहीं चाहते हुए भी अनिकामतः पूरी ताम हतम उपचक्र में, नहीं चाहते हुए भी वो छोड़ने के लिए बाध्य कर रहे लोग। जीव गलत समझ जाता है कि शरीर हमारे भोग के लिए है, वस्तुतः शरीर जीव को दुख देने के लिए दिया गया है। जैसे बढ़िया से प्रकृति उनको दुखी कर सके इसलिए शरीर दिया गया, उनमें मन बुद्धि जो कुछ भी दिया गया है वो सब नाना प्रकार की पीड़ाओं को देने के लिए दिया गया है। यद्यपि ये मनुष्य शरीर परमार्थ को सिद्ध करने वाला है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए विवेकी पुरुष अपने विवेक को जागृत करते हुए उन शरीर से असंग रहना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा इस शरीर की असंगति। लेकिन ये तब संभव है जब हम इन प्रकृति के द्वारा इन कुव्यवस्था को ठीक से समझ लें, और ठीक से समझने के बावजूद भी जब तक भगवान की कृपा बा साधु कृपा जीव के ऊपर नहीं होती है तब तक ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। जानते हुए भी हम सब लोग जानते हैं हम आत्मा है, लेकिन जितना शरीर की देखभाल करते हैं उतना आत्मा की देखभाल करते हैं? जानते हुए भी उसका कारण क्या है? उनका कारण यही स्थिर किया जाता है कि इन विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, जैसे पिछले श्लोक में श्री वृंदावन चंद्र प्रभु पाठ कर रहे थे कि विगतात्मगति स्नेह पुत्र दाराश्च लालयन, ये जो इन शारीरिक सुखों की कामना के कारण हम लोग शरीर के संबंधियों का पालन पोषण की चिंता हम कर रहे हैं, उसका अर्थ हमारे लिए हम एक दूसरा शरीर निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हम शरीर की चिंता करते हैं, आत्मचिंता नहीं है। और शरीर की चिंता में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उनको दूसरा शरीर ही प्राप्त होता है, अर्थात वो भले ही नश्वर हो क्लेश देने वाला हो, लेकिन शरीर आसक्ति जब तक बनी रहती है तब तक उनको शरीर मिलना अवश्यंभावी है। इस बुद्धिमान व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम कई प्रकार से उपदेश करता है इस विषय में। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम में है। कुछ एक श्लोक का अध्ययन हम लोग करेंगे तब हमको वास्तव में पता चलेगा कि हमारी जो ये आसक्ति है वो बिल्कुल अस्थान है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में अपनी माता को उद्देश्य बना करके जगत के जीवों को कपिल मुनि कुछ उपदेश देते हैं। और भागवतम के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय के अंत में कुछ श्लोक है, उन श्लोक को हम लोग थोड़ा समझ करके आगे चलते हैं। कहते तदर्थम कुरुते कर्म यद बद्धो याति संस्कृतिम यो अनुयाति दत्त क्लेशम अविद्या कर्म वंदना। यद्यपि जीव को यह शरीर वृद्धावस्था पर्यंत नाना प्रकार का कष्ट देता है, ऐसे कोई बाकात नहीं है। प्रहलाद महाराज तो बोलते हैं, वो कहते हैं कि जब तक जीव का आधान माता के गर्भ में होता है तभी से विचार कर लीजिए कि इससे कौन सा सुख मिला है। ये जो सुख की अदम्य लालसा है वो लालसा तब तक जीव में बनी रहती है जब तक वो अत्यंत उत्कृष्ट भगवान के चरण सेवा रूपी सुख का आस्वादन नहीं करता है, तब तक ये भावना बनी रहेगी। क्योंकि जीव भगवान की तरह सुखों का आकर है, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं, सुख समुद्र। लेकिन कब? जब वो भजन करके भगवत प्राप्ति करेगा तब। अन्यथा ये दुखों का आगार बना रहेगा। खैर, इस श्लोक में यह बताया गया है कि तद अर्थम कुरुते कर्म, वो हमेशा सदा के लिए दुख देने वाला होकर भी जीव उनके लिए ही प्रयत्न करता है। तदर्थम कार्य, हम जितना शरीर के लिए कार्य करते उतना आत्मा के लिए नहीं करते ना। कोई कोई जागृति प्राप्त जीव, एक दूसरी बात है कि वो शरीर की साधना की अवहेलना करते हुए आत्म तत्व को भजन करते हैं, अर्थात भगवान का भजन करते हैं जिससे उनको आत्म उपलब्धि हो, और वो शरीर से बढ़कर शरीर का जितना देखभाल करते हैं उससे ज्यादा बढ़कर कोई कोई व्यक्ति ये कार्य करता है। आप विश्लेषण कर लीजिए, आप समझ जाएंगे इस बात को, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कहते हैं कि यद्यपि ये उन अविद्या के रज्जु से बंधा हुआ है, ये कहते हैं कि ना ददत क्लेशम अविद्या कर्म बंधन, उन अज्ञान के कारण जीव इस कर्म बंधन को नहीं जानता है कि शरीर मुझे कर्म बंधन में डालने वाला है। यह नहीं जानते हुए पुनः पुनः उनके लिए प्रयत्न करता है, शरीर के लिए प्रयत्न करता है। उसका अर्थ ये होता है कि वो कहते हैं कि न संस्कृतिम याति, सुनिश्चित वो व्यक्ति उन संसार चक्र में फेंक दिए जाएंगे प्रकृति के द्वारा। और एक श्लोक बहुत सुंदर बता रहे, वो कहते हैं कि यम मन्नत, और ये ऐसा नहीं है सब जीवों के लिए है, साधक अवस्था में जो साधक गण है उनके लिए भी इसी बात है। जब तक भगवान की कृपा, जब तक साधु की कृपा उनके ऊपर नहीं उतरती है, तब तक ये अहम मम बुद्धि जीव में बनी रहती है। कोई कितना भी सुंदर लेक्चर करने वाला हो
या कोई अच्छी प्रकार से जप करने वाला हो होने दो। जब तक इनका फल नहीं मिलता है तब तक दुख रूपी फल उनको बार बार चखना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले इन मोह को हटाना होगा। वो व्यामोह क्या है? जैसे इस पुरंजन के लिए बताया गया है ना, ये हमारे लिए बताया गया है, क्योंकि हम ही पुरंजन है, प्रत्येक जीव पुरंजन है। वो कहते हैं कि व्यक्ति आसक्तिवश मृत्यु समय पर्यंत उन अपनी आसक्ति को अगर वो हटा नहीं पाए तो कोई कितना भी बड़ा आदमी रहने दो उनको ये शरीर प्राप्त होगा ही, जो आगे कष्ट देने वाला है। कितना भी बड़ा आदमी रहने दो, इससे कोई अंतर नहीं गिरता है। प्रकृति नहीं देखती कौन बड़ा आदमी है कौन छोटा आदमी है, हाँ बड़प्पन जिनका भजन में विवेक में जिनका बड़प्पन है, जो विवेक इनको कहते हैं कि अपने और भगवान के साथ, भगवान के साथ जो जीव का संबंध है उन संबंध का प्रत्यक्ष ज्ञान जीव को जब तक नहीं होता है, और इनके अभाव में अगर शरीर छूटा तो हम लोग बाध्य हैं, भक्त होते हुए भी बाध्य। हाँ एक फैसिलिटी है, भक्त होते हुए भगवान सोचते हैं कि हमारा व्यक्ति है ये प्रकृति के हाथ में व्यवस्था देने योग्य नहीं है, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। एक बात पक्का है, इससे सबसे पहले व्यक्ति को आसक्ति कम करके भजन साधन करना चाहिए, ये प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। तत्व दुसंग मुसुज सत्सु सज्जत बुद्धिमान। इस संसार में दुसंगति को छोड़ छोड़ करके जो साधु जनों की संगति करते हैं वही बुद्धिमान व्यक्ति है। उसका अर्थ क्या है? भगवान ये कह रहे हैं, ये उद्धव गीता का श्लोक एकादश स्कंद, भगवान ये कहते हैं कि उद्धव इनके अलावा काम नहीं बनेगा। ततो माने इसलिए, किस लिए ना बारंबार उन जन्म मरण रूपी दुख देने वाला शरीर की अप्राप्ति करने के लिए, उनको नहीं लेने के लिए। ततो दुसंग मुसुच सत्सु सज्जित बुद्धिमान। सज्जनों की संगति करते संसार में वही बुद्धिमान है। क्या आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है या हम लोग के पास थोड़ी सी बुद्धि है कि हम लोग प्रयत्न पूर्वक ये काम करते हैं? ऐसे प्रयास पूर्वक जब तक कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो ठीक ये पुरंजन वाली दशा प्राप्त करेगा। जैसे आगे उनको एक स्त्री का शरीर प्राप्त होने वाला है, प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का टाइटल दिया अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। चूंकि लालयन पुत्रान दारांश, पिछले श्लोक में बताया पुत्र और स्त्री का पालन करने की लालसा को वो छोड़ नहीं सका, वही उनके दिमाग में रह गया। इसलिए कपिल मुनि उपदेश करते हैं कि आम मन्नते पति मोहान मन माया मृषम भायतिम न स्थितम स्थित संगत प्राप्तो वित अपत्य गृह पदम। ऐसा जीव पुरंजन की तरह हम लोग भी, वो कहते हैं कि जब तक इन शरीर को नश्वर और मरीचिका नहीं मानेंगे तब तक परस्पर का जो सुख अनुभव होता है स्त्री और पुरुष के मिलन का सुख, इसको जब तक शेष नहीं कर पाएंगे तब तक उन पुत्र इत्यादि में ममतास्पद चीज में हमारी आसक्ति बनी रहेगी। उनको खलास करना चाहिए, सबसे बड़ा रोग यही है। जीव के लिए।
चूंकि कहते उपयातिर शनिर माया योषिद विनिर्मिता तम इक्षते आत्मनो मृत्यु तुरने कुपम एवावृतम।
एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को इस प्रकार समझना चाहिए कि किसी भी सेवा के मिश्र से अगर कोई स्त्री उनके निकट आती है या पुरुष स्त्री के निकट जाता है, दोनों से में बराबर बात है, है? तो उनको साक्षात अंध कुंप के समान देखना चाहिए। वो कहते हैं कि मृत्युर्तने इन मरण रूपी कुएं के सदृश उन आत्मा के लिए आत्मघाती समझना चाहिए। कठिन है, इस आसक्ति में सबसे प्रबल यह आसक्ति है, उनको काटना कठिन है, लेकिन इस पर भी उन काटे बिना हमारा काम भी बनने वाला नहीं है। बड़े से बड़े भक्त कहलाने से कोई काम नहीं बनने वाला है। काम बनेगा तो यहां जो भागवतम उपदेश करता है उसके अनुसार काम, हमारे अनुसार थोड़ी काम बन जाएगा, या 10 आदमी 50-100 आदमी सराहना कर दे बहुत बड़े भगत, इससे काम नहीं बनेगा। काम जो बनेगा यहां देखना चाहिए। वो कहते या मनद्यपतिम, और उसी प्रकार उन ग्रह में आसक्त व्यक्ति पूर्ण जन की तरह उन पत्नी में आसक्त हो करके अगर शरीर त्याग करता है तो उनको स्त्रीत्व मिलना अवश्यंभावी है, 100%। इसलिए इस वर्ग कभी उस वर्ग उस साइड बैठेगा और ये कभी इस साइड बैठेंगे, लेकिन एक बात है, अगर स्त्री की आसक्ति पति में है तब तो एक बहुत सुंदर उनको कहते पतिव्रता या सती, लेकिन कभी पुरुष को सता बोलने से गाली है, भारी तो इस वर्ग को पड़ेगा, अभी भी गाली सुनना पड़ेगा और आगे बहुत बड़ी वंचना। कपिल मुनि कहते हैं कि इस प्रकार जो नहीं समझता है और वो शरीर आसक्ति में शरीर त्याग करता है तो उनको स्त्री का शरीर प्राप्त होता है, और इन स्त्री का शरीर कहते हैं वो स्त्री क्या सोचती है, ये बहुत अच्छा पति हमको मिल गया है, हमारा पालन पोषण करता है, ऐसा वो सोचते है। कहते या मन्यते पति मोहान मन माया मृषम भायते, कहते मेरी माया का बनाया हुआ जो पुरुष रूप शरीर स्त्री के पास जाता है तो स्त्री सोचती है कि अरे ये तो मुझे पुत्र घर द्वार धन संपत्ति देने वाला मेरा पति है, स्त्री वर्ग ऐसा सोचती है। न स्त्रीत्वम सिसंगत प्राप्तो वित्त अपत्य गृहम, सोचते हैं इन स्त्री की चिंता के कारण वो स्त्री बना हुआ है, अगले जीवन में पुरुष का शरीर था लेकिन स्त्री बना हुआ है, और फिर भी वो सोचता है कि मेरा पालन करने वाला है। ये अद्भुत बात है, माया अद्भुत है, इसलिए केयरफुल रहना चाहिए। एक बहुत सुंदर कथा याद आ रही है, दशम स्कंद के जब 60वें अध्याय में हम लोग जाते हैं वहां पर कुछ बातें महाबुद्धिमान महिला रुक्मणी जी ने कुछ बातें कही है, वो बातें सुनने योग्य है। वो साफ शब्दों में बोली, वो तब का घटना है जब भगवान द्वारिका में निवास करते थे और उनका 10 बच्चा और एक एक बच्ची सब रानियों को हो गया था, ये तब की घटना है। एक दिन रुक्मणी जी के घर में भगवान को विनोद करने की इच्छा हुई और उस इच्छा से रुक्मिणी जी को अत्यंत सुंदर कहते हुए भगवान वर्णन करने लगे। वस्तु तो माँ लक्ष्मी है, उनका तो चिन्मय शरीर है, इतना बेटा बेटी होने के बाद भी उनका शरीर कृष्ण नहीं हुआ था, क्यों ना इतना सुंदर ही बना था जिस प्रकार भगवान का, क्योंकि महालक्ष्मी स्वरूप है। तो उनकी सुंदरता का बखान करते हुए भगवान ने एक बात कह दी, बोले आप जितनी सुंदर है उतना आपका बुद्धि इतना लंबा चौड़ा नहीं है। दम्बाले जी क्यों ऐसा आप कहते हैं? बोले ये आपकी पसंद जो है ना वो ठीक नहीं है, आपने मुझको जो पसंद किया वो बड़े बड़े लोकपालों के सदस्य जिनके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य बल सब कुछ था उनको त्याग करके ये ग्वाले, सोचा भी नहीं आपने। भगवान ने इस प्रकार रुक्मिणी को जैसे कहना प्रारंभ किया, बहुत श्लोक है उसमें हम ज्यादा श्लोकों में नहीं जाएंगे, लेकिन जब इस प्रकार कहने लगे तो एकाएक डर के मारे रुक्मिणी जी कांपने लगी और उनके हाथ से पंखा नीचे गिर गया जो पंखा चल रही थी। ये तो ये हाथ नीचे गया तो उनकी चूड़िया गिरने लगी, एकाएक वो पतला हो गई दुबला इस विचार से कि कृष्ण हमारा त्याग करना चाहते हैं। और भगवान ने कहा भी उसी प्रकार, बोला अभी भी कुछ बात बिगड़ा नहीं है, 10 बेटा 1 बेटी के बात बोल रहे हैं, अभी भी बात बिगड़ा नहीं है, क्योंकि आपका सौंदर्य वैसा का वैसा है और आपके चाहने वाले लोग भी बड़े बड़े लोग आज भी है, नहीं लक्ष्मी को कौन नहीं चाहेगा भाई, सब लोग लाइन में बैठ गए थे, समुद्र में जब उत्पन्न हुई तो एक एक लाइन लगाकर बैठ गए थे, हमारे कंठ में वर्णमाला डाले, अष्टम स्कंद में बात आती है, कौन नहीं चाहेगा इसको। तो बोले आप जा सकती है, आप अपने मनपसंद जो आपको बहुत सुख भोग दे सकते हैं उनके पास आप जा सकती है, बस उतना कहना था। वो तो जैसे कोई हवा का जबरदस्त झोंका है और केल का पेड़ जैसे गिर जाता है, रुक्मिणी जी धड़ामला गिर गई, क्यों? क्योंकि वो सोच लिया कि ये हमारा त्याग अवश्य करना चाहते हैं, पर इस प्रकार का आचरण भी इनका देखा गया है पहले भी है? वो सपनों में भी हाँ राधे ललिते विशाखे, वो अन्य स्त्रियों का चिंतन कहीं हमको त्याग करके ब्रज में न चला जाए, ये भय पहले से बना हुआ था। और अभी इस प्रकार की बात सुन करके वो तो होश हवास, तब भगवान बोला अरे ये लो, मैं तो मजाक कर रहा था और ये गिर गई है। भगवान ने उठा लिया उनका पसीना पसीना पोंछ करके, थोड़ा छीटा पीटा डाला होगा जल का जो भी है, कुछ जरूरत नहीं, वो भगवान के हाथ के स्पर्श से वो प्रकृत स्थिति में आ गई। और तब बोले अरे भगवान मैं मजाक कर रहा था, भगवान बोले किस उन ग्रस्त आश्रम में ये 2 मिनट हंसी खुशी के अलावा तो पूरा समय मरना है, यह चिंता वह लाना वह रोग इधर उधर, बाकी 2 घड़ी थोड़ा आनंद मजाक किया जाए तो उसके लिए, और तुम तो बिल्कुल ऐसी निकली, हम तो सोचे थे तुम मुख बुख बना करके और होठ दबाती हुई 2-4 गालियां देगी तब हमको अच्छा लगे, पर तो दक्षिणा स्वभाव है वो वामा कर सकती है, जो वामा स्वभाव वाली है वो कहते तो दक्षिणा है। और तब जाकर के एक बहुत सुंदर बात जिस श्लोक के लिए मैंने ये कहा था, इस सुख सुंदर श्लोक का उच्चारण करती है, वो कहते त्वक अश्म असुरोम नख केश पिनदम अंतरमासा अस्थि अक्रिमी बीड कफ पित्वातम न जीवत्सवम भजति कांतम अति विमूढ़ा याति पदाम्बुज मकरंदम अच्युग्र तो स्त्री। वो कहते हैं कि ये भगवान इस संसार में ये पुरुष के पास जो शरीर है वो शरीर केवल चमड़ी के द्वारा बाहर से मढ़ा हुआ है और बालों के द्वारा उनको सजाया हुआ है, ये दाढ़ी मूछ इत्यादि जो कुछ भी है और नख इत्यादि के द्वारा उनको सजाया हुआ, बाकी भीतर तो क्या चीज है सब पता है। लोकमण जी बोल दिए बाकी भीतर तो वो कहते हैं इन कफ वात पीत पुरीश क्रीम वीट ये सब अंदर गंदगी भरी पड़ी है।
इसे कहते हैं
कि इन जिंदा मुर्दे की कौन सेवा करेगा। वास्तव में वही स्त्री उन जिंदे मुर्दे को अपना पति मान सकती है जिन्होंने आपके चरण मकरंद का आस्वादन नहीं किया है। वही उन दूसरे पुरुष को कोई पति मानेगी क्योंकि इसमें है क्या। इससे बहुत सुंदर उपदेश मिलता है, ये परस्पर की जो आसक्ति है उन आसक्ति व्यक्ति को नहीं बनानी चाहिए। ये तो भगवान के इस प्रकार के एक कथानक है बहुत सुंदर, याद आ गया तो इसलिए मैंने ले लिया। बाकी तो कहते हैं कि जीवस जस्य अनुगो देहो भूत इंद्रिय मनोमय तन निरोध अस्य मरणम आविर्भावस्तु संभवा। वो कहते हैं कि ये जीव के पास ये सूक्ष्म शरीर मृत्यु पर्यंत बना रहता है, मरने के बाद भी मोक्ष पर्यंत वो बना रहता है। जब तक उनका ध्वंस न किया जाए तब तक ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का इस सूक्ष्म देह बना रहता है। और ये सूक्ष्म देह का उन भोग अधिष्ठान क्या है, ना बुद्ध ना ने पांच भूत इंद्रिय और मनोमय। ये जो देह है वो भोगों का अधिष्ठान स्वरूप है।
वो कहते हैं कि ना तन निरोधो अस्य मरणम,
जब ये एक साथ में नहीं रहता है उनको ही मरण बोलते हैं। जीवात्मा का तो मृत्यु है नहीं, तत्वत देखा जाए तो हम लोग का मरण नहीं है। ये दोनों सूक्ष्म शरीर और भोगायतन ये दोनों जब तक मिले रहे, जब तक ये नहीं मिलते हैं उनको मरण बोलते हैं और जो मिलते हैं उनको जन्म बोलते हैं। जब दोनों इकट्ठा होता है उनको जन्म बोलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को इस सारी बातों को दर्शन करना चाहिए। तो जन्म मरण है क्या, किस बात की चिंता। अगर चिंता करनी है तो व्यक्ति को उन आत्म तत्व को छुड़ाने की चिंता में अहर्निश उनको नींद भी छूट जानी चाहिए, ठीक से निद्रा भी नहीं लेगा जिनको वास्तव में पता चल गया है कि मेरा मरण नहीं है, तो फिर सनातन शाश्वत शरीर प्राप्ति का उपाय में वो उनको निद्रा कैसे आएगी। या भय को साथ में रहते हुए तो रामायण में भगवान रामचंद्र जी भरत को उपदेश देते हुए अपने पिता के मृत्यु पर शोक कर रहे थे भरत महाराज, तो उनको उपदेश देते हुए कहते हैं मृत्यु तो साथ चलती है और इस संसार में कितना भी लंबा रास्ता चलने वाले ब्रह्मा इत्यादि है लेकिन मृत्यु साथ में ही चलती है, उनको लेकर के ही लौटती है। ध्रुव सत्य है, जब ये तथ्य है सत्य है तो मरण धर्मा शरीर के लिए व्यक्ति की शोक की क्या आवश्यकता है। शोक निश्चित तब होना चाहिए कि आज मेरा जप पूरा नहीं हुआ, आज मेरा प्रणति पूरा नहीं हुआ, स्तुति पूरा नहीं हुआ, इसके लिए व्यक्ति में शोक होना चाहिए। बाकी भय तो सदैव साथ में, हम भय के साथ सोते हैं, ये कभी भी मरण धर्मा होने के कारण कभी भी छूटेगा। लेकिन हम लोग बस सोते हैं, आराम देते हैं, क्योंकि आराम लेकर के पुनः उठ करके हमको ज्यादा दुख दे, यहां तक कि प्रवचन में भी आराम दे देते हैं, एक हाथ दो मिनट थक गया बेचारा क्या करे, थोड़ा आराम दे दो, बाद में देखेंगे, बाद में सुनेंगे। हमारा प्रवृत्ति देखिए, जितना हम शरीर भावना मृत है उतना हम लोग कृष्ण भावना मृत नहीं है, ये देखा जाता है ना, तो व्यवहार से देखा जाता है। अब देखिए एक एक उदाहरण से आप समझ जाए इस बात को, कि कोई कह दे आप जिस रूम में सोती है या सोते हैं उस रूम में हार्ड पिंजर दीवार में लगा हुआ है, अब सो जाइए आप शांति से। एक हार्ड पिंजर उन दीवार में जड़ दिया गया है, वो जब बनाते टाइम एक आदमी को उसमें रख करके बनाया है, अब आप सो जाइए उसमें शांति से, नींद आएगा। अच्छा ये है क्या, इसमें क्या है क्या, ये तो बाहर से मड़ा हुआ है, बाकी भीतर क्या है उसके साथ, लेकिन हमारा है ना, दूसरे का नहीं है। देखिए ये जो ममता है या अहंता है, ये तो मेरा है या मैं हूं, ये जब तक बना रहता है तब तक जीवात्मा का कोई काम नहीं बनेगा। अन्यथा कहते हैं कि तस्मान न कार्य संत्रासो न कार्पण्य न संभ्रम, इसीलिए उन देह के लिए कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं तस्मान न कार्य, इनके लिए कभी भी त्रास या भय को प्राप्त नहीं होना चाहिए, और न तो उनके कृपणता उत्पन्न दीनता उत्पन्न होनी चाहिए शरीर के कारण, शरीर जैसा भी है उनको कैसे भी चला लेकर के एक काम कर लेना चाहिए, सदैव उन महामंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे। कहते बुद्धवा जीव गतिम धीरो मुक्त संघर्ष चित इह, बुद्धिमान जो धीर व्यक्ति हो गए हैं इस बात के ऊपर डट करके लग जाता है कि मैं आत्म तत्व हूं, मेरा देह से कोई सरोकार नहीं है, या देह से असंग रहते हुए केवल उसी साधन भजन में लगा रहता है, दिन रात अहर्निश दिवा रात्रि, रात्रि में उठ जाता तो भय लगता है, अरे मैं ये शरीर नहीं हूं, हरे कृष्णा 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 हरे, होगा कि नहीं होगा, हम बिंदास क्यों सो जाते, अरे हम शरीर है, थोड़ा आराम दे देते। और उसमें भी इस प्रकार की संस्था को प्राप्त करके किसी को निद्रा नहीं भागता है, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की। यहां बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, इसलिए प्रभुपाद महाराज के द्वारा ऐसी व्यवस्था दी है कि ज्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं है, और कोई बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। श्री ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में इस बात को कहते हैं, इस अंतिम श्लोक का पाठ करते हुए हम लोग इसी प्रवचन को समापन करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर पाठ है इसका। उस श्लोक में बताया गया है तम वे विंदति अति तरंती च देव माया, स्त्री शूद्र कोई भी योनि या उन तिर्यक योनि बहुत पापों के द्वारा भी प्राप्त हो गई है, लेकिन जिनको भगवान के प्रेमी बनने की शिक्षा दी जाती है वह भगवान आपकी माया को तुरंत जान लेता है, और जान करके नहीं अति तरंतित, यही माया है, इस शरीर की ममता, ये सब माया है, अति तरंतित वो शीघ्र उनको तर भी जाएगा, केवल जाना ऐसा बात नहीं है, बहुत सुंदर श्लोक है ब्रह्मा जी कहते। क्यों?
इसमें एक प्लस पॉइंट यही है कि इसमें जो एक फैसिलिटी है उन परंपरा का जो कृपा है वो बलवान है, इसलिए कोई पापी तापी या किसी भी प्रकार के निकृष्ट होने की गिनती में नहीं है। वो कितना भी निकृष्ट क्यों नहीं हो रहे, रहने दो, लेकिन भक्तों के संगति में उनके प्रेमी भक्त बनने की शिक्षा, भगवान के प्रेम की शिक्षा दी जाती है, वो परंपरा से आती है और उनमें बैठने वाले व्यक्ति को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा स्थापित संस्था के अलावा हमको बार बार भागदौड़ नहीं करना चाहिए, सुन लू ये श्रवण कर लू वो कर लू, एक श्रवण की भूख होती है। बाकी जो लोग जानते हैं कि कृपा यहां बरसती है, यद अद्भुत कैसे उस श्लोक मेरे माइंड से जा रहा है, मैं धक्का देता, यद अद्भुत क्रम परायण शिक्षा ऐसा लिखते हैं उसमें, यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा ऐसा लिखे चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसमें बैठने मात्र से वैष्णव आचार्य की कृपा के पात्र हो जाते हैं। अगर निष्ठा के साथ वो बैठे और केवल थोड़ा प्रयास करे, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, इनमें योग्यता अयोग्यता का बात ही नहीं है। स्त्री सूत्र ऐसा कहते हुए तिरियक योनि तक वर्णन किया, जब सुख सारिका इत्यादि पक्षी तर गए हैं उन वेश्या का पैरोट का बात बोल रहे, उन वेश्या के तोते का बात बोल रहे, वो राम राम करते हुए तोता राम राम करते हुए चला गया, है ना। तो फिर उन वैदिक सदाचार का आचरण करने वाले लोगों की बात, लोगों के लिए क्या कहना, उनके लिए क्या कहना। अर्थात वो हम तर जाएंगे उनके लिए क्या कहना, पर एक निष्ठा के साथ प्रयत्न और अज्ञान को हटाने की भरसक चेष्टा, ये दो काम अवश्य करना पड़ेगा। तज दुर्जन संसर्गम ना भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम, चाणक्य पंडित कहते हैं स्मरण नित्यम अनित्यताम, नित्य जीव जब अनित्य संसार को अनित्य शरीर को प्राप्त हो गया है उनके लिए केवल चार वस्तु बाकी रह जाता है, पांचवा कोई आचरण न करे। वो कहते हैं न चार क्या, तज दुर्जन संसर्गम, दुर्भूत व्यक्तियों का संग व्यक्ति को त्यागना चाहिए। भज साधु समागम, प्रयत्न पूर्वक साधुओं की संगति में बैठना चाहिए, चाहे अवहेलना हो सम्मान हो उसको देखना ही नहीं चाहिए। जब फैसिलिटी मिला है तो ये नहीं देखा जाएगा। अगर किसी को दंड मिलता, थोड़ा अपमान थोड़ा गालिया है, वो सहन कर लेता है कि नहीं कर लेता है। नरक जाने वाली वस्तु प्राप्ति के लिए गाली सुनकर भी लोग बैठते हैं और यहां व्यक्ति में सम्मान की कामना आती है, अरे ये मराओ सम्मान नहीं कर रहे, अरे यहां पैर रखने का जो एक मौका मिलता है, एक पैर रखने का मौका बस काफी हो गया, व्यक्ति को कंफर्टेबल समझना चाहिए। ये संस्था है, ये अद्भुत कर्म परायणशील शिक्षा है जिसमें आचार्यों का आशीर्वाद हमारे प्रयत्न से ज्यादा काम करता है। हाँ, तो ठीक से इन सारे उपाख्यानों का उद्देश्य यही है कि हम लोग ठीक से इन शरीर की जात को समझ ले और जीव की जात को समझ ले। जीव चिन्मय वस्तु है। स्मरण नित्यम अनित्यताम, उन नित्य भगवान का स्मरण उन अनित्य शरीर को और अनित्य संसार को प्राप्त होकर के केवल यही कार्य करना चाहिए। न क्या कुरु पुण्य महोरात्रम,
ऐसा पुण्यमय आचरण व्यक्ति को करना चाहिए कि किसी को कष्ट देकर के कभी नहीं जीना चाहिए। नहीं, किसी को दुख देते हुए हम जीते हैं वो हमको एक सुनिश्चित शरीर मिलेगा, हमको वो अपमान मिलेगा, हमको सब कुछ मिलेगा। ये हमको इसलिए मिल रहा है, शरीर इसलिए मिला है, सम्मान और अपमान के लिए शरीर मिला है, क्योंकि हम चाहते हैं। इनको छोड़ करके जो साधन भजन करते हैं, कोई कामना नहीं, केवल उन्नति की कामना, केवल आत्म उन्नति की कामना, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा, बस यही उद्देश्य। श्रीमद् भागवतम में ये उपाख्यान, खास करके पुरंजन उपाख्यान, हम लोग के बहुत बहुत उपादेय शिक्षा इससे मिलती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निधाय गौर हरि ब्रह्मानंद। श्रील प्रभुपाद की। Oh.